प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 9 मई 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आज के लाइफ मैनेजमेंट के विषय के रूप में फिर से मैंने एक घटना को ही चुना है, लेकिन ये जो मैंने घटना चुनी है यह थोड़ी सी अलग किस्म की घटना है। रियल घटना तो है ही, साथ ही बड़ी मजेदार घटना है और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़ी वेल नोन घटना है। मजेदार मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब फिल्मी जगत की बात होती है तो डेफिनेटली सबको अच्छा लगता है, क्योंकि फिल्म के जो हमारे सितारे होते हैं उनके प्रति हमारा एक अलग सा नजरिया होता है। सच पूछे तो उनके व्यक्तित्व में हम न जाने किन किन चीजों का ऐसा आरोपण कर देते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये वाकई में ऐसे सितारे हैं जैसे कि आसमान में सितारे होते हैं जो धरती से कहीं ऊपर एक अलग ही दुनिया में रह रहे हैं। शायद इसीलिए एक फिल्मी दुनिया बात कही भी गई है। और फ्रेंड्स अगर वह घटना कहीं प्रेम प्रसंगों से जुड़ी हुई हो तो मैं समझ सकता हूं कि फिर तो सोने में सुहागा है। और आज के इस लाइफ मैनेजमेंट के लिए मैंने एक ऐसे ही विषय को चुना है। मित्रों घटना बहुत छोटी सी है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, लेकिन उस छोटी सी घटना से आपको अपने जीवन के बहुत बड़े बड़े सूत्र निकालने हैं। सूत्र इस मायने में कि देखिए समस्याएं तो हर के जीवन में आती हैं। आप कभी ये मत समझिएगा कि जो बड़े करोड़पति अरबपति हैं, जो बड़े बड़े पदों पर रह रहे हैं, जो बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, उनके जीवन में समस्याएं नहीं हैं। यदि जीवन है तो समस्याएं भी हैं, और ऐसा भी नहीं है कि उनके जीवन में बड़ी सरल किस्म की समस्याएं हैं, केवल पैसे से उनका समाधान हो जाएगा, पद से उनका समाधान हो जाएगा, नॉट एट ऑल। याद रखिए कि यदि समस्याओं का संबंध संबंधों से होता है, यहां जो मैं दूसरा संबंध शब्द का जो मैंने प्रयोग किया है इसका मतलब है रिलेशनशिप, भाई बहन पत्नी रिश्तेदार बच्चे, जब इनसे जब समस्या पैदा होती है या वह समस्या इनसे जब जुड़ी हुई होती है तब इतनी ज्यादा जटिल हो जाती है, इतनी ज्यादा उलझनों से भरी हो जाती है कि उसका निदान दिखाई ही नहीं देता, और अगर दिखाई भी दे रहा है तो हम करने से घबराते हैं, क्योंकि मालूम है कि अब ये एक ऐसा धागा है कि अगर जो उलझ गया है और इस उलझन को सुलझाने के लिए हमने धागे के साथ कुछ भी किया तो ये धागा टूट जाएगा, और हमारी कोशिश होती है कि हम इस धागे को तोड़े बिना ही इसको सुलझाएं। सोच करके देखिए कि वो कितना चैलेंजिंग हो जाता है। चैलेंजिंग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम उसमें खुद इन्वॉल्व रहते हैं। देखिए दूसरे के बारे में तो निर्णय दे देना बड़ा आसान होता है कि यार ये कर लो, इसमें क्या रखा हुआ है, लेकिन जब वही घटनाएं हमारे खुद के साथ घटती हैं तो दिमाग सोचना बंद कर देता है, आगे बढ़ने से इनकार कर देता है, सरेंडर कर देता है। ऐसा लगता है कि क्या हो गया, सारा ज्ञान सारे अनुभव धरे रह जाते हैं। लेकिन मित्रों जो आम व्यक्ति हैं और जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो असाधारण व्यक्ति हैं, उनमें फर्क क्या है? फर्क यही है कि ऐसे समय में जब स्थितियां बड़ी जटिल हैं, बहुत चुनौतीपूर्ण हैं, वो जानते हैं इस बात को कि यही वह वक्त है जब सबसे ज्यादा धैर्य की जरूरत है, सबसे ज्यादा पेशेंस की जरूरत इसी समय होती है। क्योंकि जैसे ही हम पेशेंस लूज करते हैं, मान करके चलिए कि मस्तिष्क पर से हमारा नियंत्रण खत्म हो जाता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति बनी तो रहती है लेकिन चूंकि वो संतुलन खो चुकी है तो सही निर्णय लेने की शक्ति तो कम से कम उसमें नहीं रह जाती। हम सोचते हैं, सोच करके कोई ना कोई स्टेप भी देखिए उठाते ही हैं क्योंकि हम उसमें फंसे तो नहीं रहते हैं, लेकिन जो हम स्टेप उठाते हैं वो बहुत प्रॉपर इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमारे निर्णय सही नहीं थे, और निर्णय सही इसलिए नहीं थे क्योंकि निर्णय लेते समय जो लॉजिक माइंड होना चाहिए था वह लॉजिक माइंड काम नहीं कर रहा था, हम उसमें इन्वॉल्व हो गए थे, हम सारे निर्णय इमोशंस में आकर ले रहे थे, और नतीजा यह हुआ कि उन इमोशंस ने हमारे निर्णयों को गलत कर दिया। लेकिन मित्रों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे जटिल स्थितियों में जिसमें इमोशंस भी हैं, रिलेशनशिप भी हैं, प्रतिक्रियाएं भी हैं, रिएक्शंस भी है, आक्रोश भी है, प्रतिशोध भी है, इसके बावजूद बहुत सटीक निर्णय लेते हैं। बहुत ही संतुलित निर्णय लेते हैं, बहुत ही प्यारे निर्णय लेते हैं, और ऐसा निर्णय लेते हैं कि सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती। ये होता है निर्णय का सर्वोत्तम रूप। दोस्तों, मैंने घटना से पहले आपको थोड़ी सी ये पृष्ठभूमि जानबूझकर बताई है, क्योंकि देखिए घटना तो बहुत ही छोटी सी है, अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। अब आपको इस घटना पर जो कुछ भी मैंने अभी बताया है उसको अप्लाई करना है, और केवल अप्लाई ही नहीं करना है बल्कि बेहतर होगा कि आप सब भी इसी तरह की कोई घटना अपने जो आपके जीवन में घटी हो उसके बारे में सोचें। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट इसी तरह की घटना, लेकिन एक ऐसी घटना जिसमें इमोशंस इन्वॉल्व हैं, सोचें, देखें कि उनकी में क्या क्या जटिलताएं आई थी, और फिर देखें कि हमने उन्हें कैसे सुलझाया, और फिर ये भी सोचें कि इसके और क्या क्या रास्ते हो सकते थे। फ्रेंड्स, यह भी एक बहुत बड़ा प्रशिक्षण है, एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, और जब तक हम अपने दिमाग को ट्रेंड नहीं करेंगे देखिए, तब तक दिमाग उस तरीके से उसी क्षण रिएक्ट नहीं करेगा, वो तो अपने पुराने पैटर्न पर रिएक्ट करेगा, जैसा कि हम अभी तक करते रहे हैं, है ना। हमारे दिमाग में एक मैकेनिकल सिस्टम बना हुआ है, जब हम कोई भी चीज सुनते हैं तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, उस पर विचार कहां करते हैं, उसका हम सही तरीके से उत्तर भी नहीं देते, हम तो प्रतिक्रिया देते हैं, आंसर थोड़ी देते हैं, रिप्लाई थोड़ी देते हैं, रिएक्ट करते हैं, नो रिप्लाई, रिएक्ट, फट से बोल देते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म में वो डला हुआ है। तो हमें अपने इस मैकेनिज्म को सुधारना है, जो बहुत जरूरी है, हमारे रिलेशंस को खत्म कर देता है, जीवन में असफलताएं ही असफलताएं दिलाने लगता है, हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। ये कह लीजिए कि जीवन जो इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है, बेकार सा लगने लगता है, जो बिल्कुल कह लीजिए रुई की तरह हल्का, पवित्र और श्वेत है बिल्कुल, जिसे उड़ना चाहिए, पता लगा कि वो भारी बन करके जमीन पर लौट रहा है, किसी तरीके से करवटे बदल बदल करके अपना वक्त काट रहा है। हम अपने जीवन को ऐसा बना देते हैं क्योंकि हम हर चीज पर रिएक्ट करते हैं, हमें जरूरत है रिप्लाई देने की। तो मित्रों, आइए मैं अभी छोटी सी जो घटना है, प्यारी सी घटना है, बड़ी खूबसूरत घटना है, और महानता क्या होती है, कैसे होती है, इसमें आप देखिए। फ्रेंड्स, आप इस घटना को, हो सकता है कि नाम वगैरह तो आप जानते हैं, लेकिन इस घटना के अंदरूनी परतों को शायद आप न जानते हो। मित्रों, आपको मालूम है राज कपूर हमारे यहाँ के बड़े फिल्म इंडस्ट्री के शो मैन रहे हैं, अद्भुत व्यक्ति रहे हैं, और मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिला जब वो दादा साहब फाल्के अवार्ड लेने के लिए दिल्ली आए हुए थे, राज कपूर साहब। आपको मालूम है कि राज कपूर जी का जो विवाह है वो कृष्णा कपूर जी से हुआ था, और कृष्णा कपूर आज भी हैं सौभाग्य से। और आपको आश्चर्य इस बात का होगा, या मैं सूचना देना चाहूंगा, आश्चर्य तो क्यों होगा कि कृष्णा कपूर जी मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री की सर्वाधिक सम्मानित महिला है, सर्वाधिक सम्मानित महिला। आज वो बहुत वृद्ध हो गई हैं, लेकिन यदि वो कहीं भी पहुंच जाए तो लोग खड़े हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो सबसे अधिक उम्र की है, बल्कि सम्मान से, श्रद्धा से सबकी गर्दनें उनके चरणों पर झुक जाती हैं, वो इतनी महान महिला है, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, मतलब हर चीज से उन्होंने एक अद्भुत उदाहरण हमारे सामने रखे हैं, आम जिंदगी के भी और ऐसी जिंदगी के भी जो कि फिल्म इंडस्ट्री में रह रहे हैं, जो पृथ्वी राज कपूर की बहू हैं, इतने बड़े खानदान की हैं, ऐश्वर्य में पली बढ़ी हैं। उनके जो पिताजी थे वो खुद पुलिस ऑफिसर्स थे, बहुत बड़े, जबलपुर के रहने वाले थे, बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर्स थे, बहुत सुंदर भी है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो विनम्रता है, जो उनकी मानवीयता है, वो अद्भुत है। और ये क्यों है, यही आपको अभी इसमें दिखाई देगी। मित्रों, आपको मालूम है कि राज कपूर जी थोड़े से प्रेमी स्वभाव के थे, वो अपनी रचनात्मकता के लिए प्रेम भाव को बहुत जरूरी मानते थे, और खुलेआम कहते भी थे कि प्रेम से मुझे शक्ति मिलती है, इसीलिए उनके बहुत ज्यादा रोमांस के किस्से भी उस समय लोग बताते हैं कि अखबारों में, मैगजीन्स में आते रहते थे। और नरगिस जी के साथ उनका जो प्रेम प्रसंग था उस समय बहुत चर्चित था, लोग काफी चर्चा करते थे। तो मित्रों, नरगिस जी चाहती थी कि राज कपूर उनसे शादी करें, लेकिन राज कपूर जी शादी नहीं कर, क्योंकि वो तो ऑलरेडी शादीशुदा थे, कृष्णा कपूर से उनकी शादी हो गई थी, कृष्णा कपूर को चाहते भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन प्रेम करने का मतलब उनकी दृष्टि में शादी कर लेना नहीं था, प्रेम तो बस प्रेम है। ठीक है मित्रों, नरगिस काफी उदास हुई, काफी हताश हुई, बहुत ज्यादा निराश हुई। जो भी मामला चला, अखबारों में छपता रहा, कृष्णा कपूर जी तक भी बातें पहुंचती रही। जो कुछ भी है, अंत में आपको मालूम है कि नरगिस जी की जो विवाह है वो सुनील दत्त जी से हो गया। फिर से एक बहुत ही शानदार व्यक्ति, और फिर से ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं सुनील दत्त जी से भी मिला हूं जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उस समय। खैर, तो मित्रों, जब सुनील दत्त जी से नरगिस जी की शादी हो गई तो एक प्रोग्राम में नरगिस और कृष्णा कपूर मिली, दोनों मिली, और नरगिस जी ने जाकर के कृष्णा कपूर जी से कहा कि मैं आपसे माफी मांगती हूं कि मैंने आपको इतनी तकलीफ दी, क्योंकि अब विवाह करने के बाद मैं समझ सकती हूं कि क्या आपके दिल पर बीती होगी उस समय के प्रसंगों को सुनकर। कृष्णा कपूर जी ने कहा कि नरगिस, तुमको माफी मांगने की कतई जरूरत नहीं है, तुम नहीं होती कोई और होता, क्योंकि यह मेरे भाग्य में लिखा हुआ था, इसलिए माफी बिल्कुल भी मत मांगो, क्योंकि कहीं तुम्हारी कोई ऐसी इसमें गलती है ही नहीं। और नरगिस ने जैसे ही यह उत्तर सुना उनकी आंखें बरसने लगी, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि कृष्णा कपूर इस तरीके से इस मामले को देखेंगे, करेंगे। पहली बात, प्रतिक्रिया नहीं, आप देखिए उत्तर, एक संतुलित उत्तर। और मित्रों, दूसरी बात यह है कि आप सोचिए कि जब ये सारे प्रसंग चल रहे थे अखबारों में और मैगजीन्स में, सारे चटकारे लिए जा रहे थे, उस समय ये पूरा का पूरा जो संबंधों का जो जाल था, कितना मकड़ जाल सा बन गया होगा, चीजें कितनी बुरी तरह से उलझ चुकी होंगी। कृष्णा राज कपूर जी ने उसको किस तरीके से सुलझाया होगा? धैर्य रखा, अपने पर विश्वास रखा, राज कपूर जी पर विश्वास रखा, ईश्वर, भाग्य, जो भी आप कह लीजिए, उस पर भी उनकी आस्था है तो उस पर भी विश्वास रखा होगा, समय की प्रतीक्षा की और चीजों को बहुत सही तरीके से आगे बढ़ने दिया। सही तरीके से आगे बढ़ने देना यह बहुत जरूरी है। अगर चीजें गलत तरीके से आगे बढ़ेंगी तो गलत जगह पहुंचेंगी, लेकिन अगर सही तरीके से आगे बढ़ रही है तो सही जगह पहुंचेंगी। मतलब राज कपूर जी के प्रति उनके मन में जो प्रेम की भावना थी, जो कह लीजिए लगाव था, जो निष्ठा थी, उसमें अगर वो कमी लाती तो मामला गड़बड़ हो जाता, लेकिन उसको भी उन्होंने बनाए रखा। और कहीं ना कहीं राज कपूर जी में भी वो दृढ़ता तो थी, तभी उन्होंने अपने को बिल्कुल मजबूती के साथ अपने पैरों पर खड़ा रखा। तो मित्रों, आप देखिए कि कितने जटिल स्थिति में भी राज कपूर और स्पेशली कृष्णा राज कपूर जी ने इस संकट से न केवल खुद को उबार लिया, न केवल राज कपूर को ही उबारा, बल्कि अपने पूरे के पूरे परिवार को उबार लिया। मित्रों, मैंने तो एक छोटी सी घटना को आधार बना करके इसकी चर्चा की है, लेकिन जब आप पूरे और भी आगे पीछे की चीजों को देखेंगे तब आपको उन जटिलताओं का एहसास होगा कि सच में वो दौर किस तरीके का दौर था, क्योंकि उस पर काफी लिटरेचर में, उस पर काफी लिखा भी गया है, किताबों में अवेलेबल भी है। और कृष्णा राज कपूर जी तो है ही, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने उन सब समय को देखा है, उन सारे प्रसंगों के वो पढ़ने के पाठक रहे हैं, तो ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, ये जीवन की सच्ची घटना है। तो मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में कितने भी गहरे बादल क्यों न छाए हुए हो, बादल कितने भी काले क्यों न हो, विश्वास रखिए कि उसके पीछे कोई ना कोई सूरज तो छिपा हुआ ही है। बादल छटेंगे, सूरज निकलेगा ही निकलेगा। तो मित्रों, इसी के साथ ही मैं एक सूचना देते हुए आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को समाप्त करना चाहूंगा कि मित्रों, कल बुद्ध पूर्णिमा है, यानी कि गस्टेड हॉलीडे है। पहली बात तो यह कि छुट्टी का दिन होने के कारण कल लाइफ मैनेजमेंट नहीं आएगा, और दूसरी बात यह कि बुद्ध पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, और ईश्वर से प्रार्थना कि हे ईश्वर, हम सबको विवेक प्रदान कर। तो दोस्तों, अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।